ये काफ़ी सवाल हैं तौहीन रिसालत और पाकिस्तान में उसमें जो हालिया वाक़यात हैं उनके तनाजर में। एक सवाल तो ये है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो इसलिए जो इकदाम किसी ने किया था उनके साथ क्या होगा। इस्लाम तौहीन रिसालत को सज़ा समझता है या नहीं समझता, और फ़र्द अगर तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है तो रियासत सज़ा देती है, लेकिन अगर रियासत तौहीन रिसालत की मुर्तकिब हो जाए तो क्या करना चाहिए। और भी कई सवाल हैं।
पहली बात, क्योंकि ज़्यादा अहम है तो मैं उसी पर अपना नुक्ता नज़र अर्ज़ करता हूँ। देखिए, बात यह है कि किसी की नीयत क्या है, इरादा क्या है, खुदा उसके साथ क्या मामला करेगा, उसका मुकदमा खुदा की अदालत में पेश होगा, वो वहाँ कामयाब होगा, नाकाम होगा, मुआवजे में आएगा, इसका फ़ैसला करने का ना मुझको कोई हक है ना आपको कोई हक है। इसमें हमेशा अपनी ज़ुबान बंद रखनी चाहिए। हम दुनिया में लोगों की आखिरत के फ़ैसले करने के लिए नहीं बैठे हुए, ना इस मामले में कोई मुस्बत बात कहनी चाहिए ना मनफी बात कहनी चाहिए। हमारा काम यह है कि हम हर एक के लिए खैर की दुआ करें, लोगों के लिए जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले कर लें। ये हमारे यहाँ आम लोगों ने तरीका इख्तियार कर लिया है कि ज़रा उन्हें किसी से इख्तलाफ हो तो दो काम करते हैं, एक उसका निकाह तोड़ देते हैं और दूसरे उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आखिरत का फ़ैसला खुदा ने अपने हाथ में रखा है, इस वजह से खुदा को कोई चीज़ तजवीज़ भी नहीं करनी चाहिए और इसमें अपना वर्डिक्ट भी देना चाहिए। हमें जो कुछ कहना है वो दुनिया में कहना है और दुनिया में खुदा के कानून के मुताबिक कहना है। यानी कोई वली अल्लाह भी है और वो कोई गलत काम करता है तो कहना है कि ये गलत काम है। यानी हमारा काम ये है कि हम ठीक ठीक बता दें कि ये सही नहीं है। तो दुनिया में जो खुदा का कानून है, जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून है, उसके मुताबिक किसी शख्स को कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी भी शख्स को, किसी बड़े से बड़े मकसद के लिए भी कोई हक नहीं। हमारे यहाँ ये बात तय कर दी गई है कि जो चीज़ें मुसलमानों के हुक्मरानों से मुतल्लक हैं वो उन्हीं को करनी है, उनके सिवा कोई अगर करेगा तो वो फसाद का इर्तकाब करता है। अगर वो कानून को हाथ में लेता है तो उससे कोई रियायत नहीं की जा सकती, उसको दुनिया के लिहाज से मुजरिम ही करार दिया जाएगा। आखिरत में खुदा क्या मामला करता है ये मैंने अर्ज़ कर दिया, ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हम तो ये बताएंगे और हर हाल में बताएंगे कि ये काम करने का आपको कोई हक नहीं, कोई इख्तियार नहीं है आपको। तो ये उसूल की बात है, ये पहले मैंने अर्ज़ कर दी। उसके बाद जो अगला सवाल आपने किया है, तो देखिए, कुरान मजीद, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और मुसलमानों की फ़िक्र, हमारे मुल्क में जो कानून बनाया गया तीनों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल बेसलेस कानून। ना कुरान में इसकी कोई बुनियाद है, ना हदीस में इसकी कोई बुनियाद है। मुसलमानों का सबसे जलीलुल कदर फकीह इमाम अबू हनीफा कोई तसव्वुर भी नहीं करता ये जो कुछ किया गया है उसका। और ये जिस वक्त मैंने आज से कई बरस पहले इस पर तवज्जो दिलाई थी कि ये कानून इस तरह का कानून है जो आपने बनाया है, जो तमाम माखज के ख़िलाफ़ है, तो उस वक्त तो खैर हमारे यहाँ आम तरीका जज्बाती हंगामा करने का है, अब कहो भाई सब ने मान लिया। अभी ये देखिए, हाल में हमारे पाकिस्तान के एक जलीलुल कदर आलिम, नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उनकी वो चीज़ जो है वो बिल्कुल आ गई है सब जगह पे, मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने पूरी वजाहत से बयान कर दिया है कि कोई बुनियाद फ़िका हनफी में इस कानून की नहीं। ज़ाहिर है वो तो फ़िका ही की बात करेंगे, तो ये ना कुरान पर मबनी है, ना हदीस पर मबनी है, ना फ़िका पर मबनी है। इसलिए मैं तो पहले दिन से जब ये बनाया गया था ये कह रहे हूँ कि ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ सख्त बेइंसाफ़ी है कि आपकी निस्बत से एक ऐसी बात कही जाए जो आपने कभी नहीं की। ये मामूली बात नहीं है, यानी आप खुदा के बारे में कोई ऐसी बात कहें जो उसने नहीं कही तो ये खुदा पर झूठ बांधना है। इसी तरह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात कहें तो ये आप पर झूठ बांधना है। और आपको मालूम है कि अल्लाह ताला अपने ऊपर झूठ बांधने को इफ्तरा अल्लाह कहता है और बड़ा जुर्म करार दिया है इसको, ये कबीरा गुनाह है। ऐसे ही रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई गलत बात मंसूब की जाए तो आपने फरमाया कि वो आदमी अपना ठिकाना फिर जहन्नम में बना ले जिसने मुझ पर झूठ बोला। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ और इससे कोई इख्तलाफ की जसारत नहीं कर सकता कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई कानून न बयान किया कभी, न दिया, न कुरान ने ऐसी कोई बात की। कुरान मजीद में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में सिर्फ 5 जरायम हैं जिनकी सज़ाएँ शरई तौर पर मुकर्रर की गई। एक, फसाद फिलर्स, यानी आप किसी की जान माल आबरू के दर पे हो जाएं, कानून को अपने हाथ में ले लें آپ نیوسنس پیدا کر دیں سوسائٹی کے لیے, لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو, مال کو خطرہ ہو, جیسے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کو فساد کہتے ہیں, فساد کلرز. ایک یہ جرم ہے, دوسرے زنا بدکاری, تیسرے بدکاری کی تہمت لگانا جس کو قذف کہا جاتا ہے, چوتھے کسی کو قتل کر دینا, اور پانچویں چوری. یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں مسلمانوں کے لیے, وہ بھی غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں, مسلمانوں کے لیے ان کی سزائیں انتہائی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. یعنی وہ کس بات کی سزا ہے؟ وہ اس بات کی سزا ہے, وہ محض چوری کی سزا نہیں ہے, محض زنا کی سزا نہیں ہے, اس بات کی سزا ہے کہ تم مسلمان ہو, تم نے میرے ساتھ عہد اطاعت باندھا تھا, میرے پیغمبر کو مانا تھا. اس سب کچھ کے باوجود کہ اسلام کا شعور رکھتے تھے, اس عہد کو توڑ کر چوری کیا تم نے, تو اب تم خدا کے عذاب کے دنیا میں مستحق ہو گئے. پانچ جرائم کی سزائیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, آپ کے ملک میں بھی یہ بحث بہت ہو رہی ہے, دنیا بھر میں ہو رہی ہے, موت کی سزا قرآن مجید نے 14 صدی پہلے اعلان کر دیا ہے کہ کسی شخص کو دو جرائم کے سوا موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. اور بڑی بڑی غیر معمولی آیت ہے جس میں اعلان کی ہے, من قتل نفسن بغیر نفسن الفساد ان فلرز کانما قتل الناس جمیع. اگر یہ دو جرائم کے سوا کسی کی جان لوگے, ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے, دوسرے یہ کہ وہ دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو, ان دو جرائم کے سوا کسی کی جان لوگے تو پوری انسانیت کے قاتل شمار ہوگے. یہ قرآن مجید کی ہدایات ہیں. تو اس لیے جو بات نہ قرآن پر مبنی ہے, نہ حدیث پر مبنی ہے, نہ وہ ہماری فقہ پر مبنی ہے, اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو خدا اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کو جذبات کی نظر کرنے کے بجائے علم کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.